Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
लेकिन परमात्मा खुद नित्य है, वो सावधिक नहीं है, क्योंकि यावत सावधिक को जजमेंट करने वाला भी सावधिक होगा तो कौन जजमेंट करेगा, वो तो निरवधि ही होना पड़ेगा, इसलिए वो नित्य है, है? अवस्थात्रय का जो साक्षी है उसको नित्य कहते हैं। नित्य किसको कहते हैं? अवस्थात्रय के साक्षी है उत्पत्ति, स्थिति, लय। ये तीनों अवस्था का जो साक्षी होगा वह क्या होगा? नित्य होगा। उत्पत्ति का भी वह साक्षी है, स्थिति का भी साक्षी है, लय का भी साक्षी। और लय का साक्षी भी लय हो गया तो फिर लय का साक्षी कौन होगा? इसलिए एक व्यक्ति जो लय रहित होगा तो उसी का नाम नित्य होगा, उसी का नाम परमात्मा होगा, उसी का नाम ब्रह्म होगा, उसी का नाम आत्मा होगा। यहीं पर तो शून्यवादी लोग मार खा जाते हैं, कहते हैं सर्वम शून्यम, जगत में कुछ भी नहीं है, जगत भी नहीं, जीव भी नहीं, जीवन भी नहीं, आत्मा भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, कुछ नहीं, सर्वम शून्य। बोले परमात्मा भी नहीं, आत्मा भी नहीं, इसका कोई साक्षी होगा कि नहीं? परमात्मा नहीं रहता महाप्रलय में, परमात्मा भी नहीं रहता, इसका कोई साक्षी है कि नहीं? और यदि कोई भी साक्षी नहीं है कहोगे तो महाप्रलय में परमात्मा नहीं रहता, ये बात हम कैसे माने? साक्षी नहीं है तो कैसे मानेंगे? महाप्रलय में परमात्मा नहीं रहता इसका कोई साक्षी है तो वो कौन है? परमात्मा ही है कि अनात्मा है? अनात्मा तो साक्षी हो नहीं सकता। परमात्मा अपने विनाश का, अपना खुद का साक्षी कोई भी नहीं होता है, होता है? अपनी मृत्यु का साक्षी अपने होगा है? अपने विनाश का साक्षी खुद ही होगा? नहीं होगा। साक्षी तो विनाश रहित ही होना पड़ेगा, इसलिए ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा वह सत्य है, साक्षी है। इसलिए अवस्था त्रय का जो साक्षी होगा उसी को कहते हैं नित्य। चतुर्थी है, नमः में चतुर्थी विभक्ति आप लोग रामण पढ़े हो कि नहीं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, पढ़े हो भाषा में, पढ़े हो। कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, है? कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अपादान, संप्रदान है चतुर्थी, अपादान है पंचमी, अलग होने और नीचे गिरने अर्थ में पंचमी होता है, किसी को देने अर्थ में चतुर्थी होता है। तो जहां चतुर्थी विभक्ति लगता है वहां देना होता है। तो तस्मै शिवाय क्यों बोलते हैं? शब्द है शिव, नमः शिवाय, तो हम क्या कहते हैं? नमः शिव, शिव को नमस्कार कर रहे हैं। तो शिवाय आय, ये जो विभक्ति है शिव प्लस आय चतुर्थी, यानी इसका अर्थ हुआ शिव को नमस्कार हो, मेरा नमस्कार मैं शिव को दे रहा हूं। ब्राह्मणाय, ब्राह्मण को नमस्कार है, ब्राह्मणाय दक्षिणाम देही, ब्राह्मण को दक्षिणा दो, नौकर को तनख्वाह दो, चतुर्थी नहीं लगेगा वहां, वो तो तनख्वाह है ना, दक्षिणा नहीं है। नित्याय, नित्य प्लस आय, नित्य कौन है, तो भगवान है, क्योंकि वो नित्य है इसलिए उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं, क्योंकि नित्य को नमस्कार करोगे तो फल नित्य मिलेगा। नित्य फल क्या है? मोक्ष, ये नित्य फल है। भगवान यदि मोक्ष देंगे तो सावधिक नहीं होगा, समझे कि नहीं, भगवान जो मोक्ष देंगे वह सावधिक नहीं होगा, लिमिटेशन नहीं रहेगी उसमें, इतने समय के लिए मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, हैं? कितने वर्ष के लिए मुक्ति चाहिए आप, हैं? एक संप्रदाय चल पड़ा था ना यहां, आजकल भी है शायद, ओसो 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 चलता रहा, ओसो है, वो तो अपने आप तो गए, लेकिन है उनका संप्रदाय अभी भी है ओसो। तो हमने जब सुना ओसो क्या करते थे कि उनके अनुयायियों को संन्यास देते थे, बोले उनका सन्यास की प्रक्रिया क्या थी, बोले सावधिक सन्यास। अब सन्यास भी कई सावधिक होता है, हमको सुनाया किसी ने, सावधिक माने तुमको कितने दिन के लिए सन्यास चाहिए, तो उनके सामने जाकर कहते थे कि 1 हफ्ता के लिए सन्यास दे दो, तो वह लिख कर देते थे 1 हफ्ता के लिए तुझे सन्यास, तो 1 हफ्ता के बाद फिर तो सन्यास छोड़ो, कोई 1 महीना के लिए, कोई 15 दिन के लिए, कोई 1 वर्ष के लिए, ऐसा ऐसा उठपटांग भी होता रहा दुनिया में, अभी भी हो रहा है, होता है सावधिक सन्यास, सन्यास भी कई सावधिक होता है। अब ये सब बकवास ही है कि नहीं, बोलो, ब्रह्मज्ञान तुमको कब तक के लिए चाहिए, हैं? ब्रह्मज्ञान कब तक के लिए चाहिए तुम्हें, सावधिक बोलो, क्या बात करते हो बाबा, समझ में नहीं आता है ब्रह्मज्ञान, तुम्हें मेडिकल साइंस का ज्ञान कितने समय के लिए चाहिए, सावधिक ज्ञान कई सावधिक होता है। तुम स्कूल में पढ़ने जाओ और मास्टर तुमसे पूछे तुम्हें क्या चाहिए, बोले मुझे विद्या चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, बोलो, सावधिक होता है, क्या बात करते हो, ज्ञान सावधिक नहीं होता, मोक्ष सावधिक नहीं होता। नित्याय, क्योंकि ज्ञान भी नित्य है, ब्रह्म नित्य है, परमात्मा नित्य है, तो ज्ञान भी नित्य है, तो मोक्ष भी, एक बार हो गया तो हो गया, काम खत्म, उसके बाद फिर दोबारे मुक्त होने का कोई प्रश्न नहीं। तो तुम अभी भी मुक्त हो, क्योंकि ज्ञान नित्य है, मोक्ष नित्य है, तुम्हें ये पता नहीं कि मैं मुक्त हूं, तुमको भ्रांति ये हुआ कि मैं फंसा हूं, तुमको भ्रांति ये हुई है कि मैं फंसा हूं, फंसे कहां हो भाई, तो तुम्हारा फंसना काल्पनिक है, ये तो वेदांत सिद्धांत कहता है, तुम्हारा फंसना तुम्हारी अपनी कल्पना है, काल्पनिक है, तुम फंसे कहीं नहीं हो। नित्याय, ये स्वरूप लक्षण है, ऐसे जो नित्य स्वरूप वाले भगवान हैं, शंभु हैं, परमात्मा हैं, उनको अयम इयम नति ही, मेरा ये नमस्कार है। और कैसे हैं वो? त्रिगुणात्मने, ये तटस्थ लक्षण है, ये स्वरूप लक्षण नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो निर्गुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक है तो का मतलब अर्थ हुआ कि माया में विद्यमान जो तीन गुण हैं, उन तीन गुणों का वह प्रकाशक है, तीन गुणों का आत्मा है, माने तीन गुणों का अस्तित्व परमात्मा से सिद्ध है। तीन गुणों का अस्तित्व माया से सिद्ध नहीं है। माया से क्यों सिद्ध नहीं है? माया खुद ही सिद्ध नहीं है तो क्या तीन गुणों को सिद्ध करेगी? वो माया का अपना खुद का अस्तित्व नहीं है तो तीन गुणों को कैसे सिद्ध कर सकती है? वो माया को अपने अस्तित्व में आने के लिए ही उस परमात्मा का आश्रय चाहिए। परमात्मा के आश्रय में माया अस्तित्व में आई और उसी परमात्मा के अस्तित्व में तीन गुण अस्तित्व में आए। इसलिए तीन गुण के आत्मा, आत्मा माने तीन गुणों को अस्तित्व में लाने वाले कौन है? तो परमात्मा। तुझार ये ऐसी थोड़ा कम कर सकते हो? हाँ, मुझे लगता है कुछ ठंडी ही है ज्यादा। एक दो को बंद कर दो, एक दो को चलाओ, बाकी बंद कर। सोफोकेशन बढ़ेगा, सब बंद करो। हाँ, एक दो चलाओ, बाकी बंद करो। हाँ, तो एक दो चलाओ, चलाना पड़ता है, वो एग्जेशन करेगा ना, फिर हवा अंदर का जो सोफोकेशन है बाहर फेंकेगा। हाँ, बस बस।
नित्याय त्रिगुणात्मने पुरजिते,
पुरजिते का अर्थ हुआ त्रिपुरासुर को जिसने जीता है। पुरजिते, पुर को जीता। कितने पुर हैं? तीन पुर हैं। तुम क्या हो? त्रिपुरासुर हो तुम, और हम क्या हैं? हैं? तुम और हम त्रिपुरासुर हैं भाई। मनुष्य समझते हो तुम लोग? तुम और हम त्रिपुरासुर हैं। एक राक्षस हुआ नहीं, सुना हुआ है ना? उसने तपस्या की, बड़ा भारी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम वरदान मांगो, तो उसने कहा कि मैं कभी भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा वरदान तो किसी का दिया हुआ नहीं होता है। तुमको मृत्यु से डर लगता हो तो आत्मानंद से वेदांत तो पढ़ो। ब्रह्म विद्या ही तुमको मोक्ष दे सकता है। मुक्त हुआ हुआ जीव ही मृत्यु से पार होता है, उसको मरना नहीं पड़ेगा। तो मरना न पड़े ये अवस्था तो ज्ञान से ही होता है। तमेव विदित्व अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, श्रुति ने कहा है ना, ज्ञान देव तु कैवल्यम। वो ज्ञान से ही होगा। बोले महाराज ज्ञान हमारी बस की बात नहीं, असुर है तो कहां से ज्ञान आएगा उसको? ये ज्ञान साधना हमारी बस की बात नहीं है महाराज। तो क्या चाहते हो? बोले फिर भी हमको मृत्यु से डर लगता है, हैं? मरना न पड़े, कोई उपाय वरदान दो। बोले बेटा देखो, मरना न पड़े ये तो मोक्ष ही होगा, ज्ञान से ही होगा। मरना तो पड़ेगा पड़ेगा ना, तुम अपने बुद्धि लगाओ, निमित्त मृत्यु मांगो। ऐसा हो तब मेरी मृत्यु हो, अन्यथा न हो। इसको बोलते हैं निमित्त मृत्यु। ऐसा हो तो मृत्यु हो, अन्यथा मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम निमित्त मृत्यु मांगो। उसने बड़ा बुद्धि लगाया। तो इसका मतलब यह है कि मुझे तीन रथ दे दो, मुझे तीन रथ दे दो। एक लोहे का रथ, दूसरा तांबे का रस तामा, और तीसरा सोने का रस। ये तीन रथ मुझे दे दो, और तीन रथ में मैं उड़ता रहूं, रथ में ही घूमता रहूं अंतरिक्ष में, आकाश में। घूमता रहूं फिरता रहूं। और ये रथ तीन रथ कभी भी हमने सामने ना आवे, लाइन से हमने सामने ना आवे, एक रथ उधर है तो दूसरा उधर, तीसरा उधर है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है 24 घंटे में केवल एक मुहूर्त के लिए आमने सामने आएंगे हैं, बाकी ये तीनों रथ एक दूसरे विपरीत घूमते रहेंगे, आमने सामने केवल एक मुहूर्त के लिए आएंगे। आगे उसने सोचा नहीं, एक मुहूर्त के लिए आमने सामने आता है तो कोई हर्जा नहीं है। अब क्या मांगते हो वरदान बोलो? बोले तीन रथ को अप्रसिद्ध कभी कहीं किसी ने न सोचे हुए हथियारों से कोई यदि तीनों रथ को एक ही बार तोड़कर नष्ट करता है, भेदन करता है, तब मेरी मृत्यु हो अन्यथा न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, क्योंकि ये विश्व सृष्टि में परमात्मा के लिए माया का आश्रय लेने वाले परमात्मा के लिए असंभव कुछ भी नहीं, समझे कि नहीं? इस विश्व सृष्टि में माया का आश्रय लेने वाले परमात्मा के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने माया के बारे में कहा है, मायायाम सर्वसंभव, माया है तो कुछ भी हो सकता है, बस असंभव कुछ भी नहीं है माया में। मायायाम सर्वसंभव, इसलिए माया के बारे में और दूसरी जगह शंकराचार्य जी ने अघटित घटना पटी यसी माया, कभी किसी के द्वारा सोचा भी नहीं गया हुआ भी वह घटना को घटित करके दिखाने की क्षमता किसमें है? माया में है। और उस माया का आश्रय लेगा कौन? तो परमात्मा। और जब परमात्मा उस माया का आश्रय लेगा तो उसके सामने असंभव कुछ होगा नहीं। लेकिन यहां तक तो उसकी बुद्धि गई नहीं असुर की, उसने तो विचार किया कि असंभव अप्रसिद्ध हथियारों से है? प्रसिद्ध हथियार नहीं, प्रसिद्ध हथियार तो यही धनुष बाण और तीर बंदूक गोले तोप यही ना है, और एक ही तीर से तीनों रथ को तोड़ सके एक ही बार में, तब जाके मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी को तो पता था कि असंभव कुछ भी नहीं है, तथा अस्तु तेरी इच्छा अनुसार ही तेरी मृत्यु हो, ठीक है तेरी मृत्यु हो तो इसी तरह हो। अब तीन रथ दे दिया, लोहे का रथ, तांबे का रथ और सोने का रथ दे दिया, और तीनों रथ में वह विचरण करने लगा, कभी लोहे के रथ में घूमता है, हैं? तुम अभी कौन रथ में घूम रहे हो? ए त्रिपुरासुर है लोहे का रथ में है, ये शरीर जो है लोहे का रथ है, ये देखो तुम्हारे में तीन पूर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन शरीर ही तीन पूर हैं। और इस शरीर में घूमने वाले हम जागृत में स्थूल शरीर में, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर में, और सुषुप्ति में कारण शरीर, और कारण शरीर सुषुप्ति से जगते हैं तो या स्वप्न में या फिर जागृत में स्थूल शरीर में, एक ही बार तीनों शरीर में तो हम रह नहीं सकते, इसमें रहे तो उसमें नहीं, उसमें रहे तो उसमें नहीं, उसमें रहे तो इसमें नहीं, तो यही त्रिपुरासुर का लक्षण है, ये जीव भाव ही त्रिपुरासुर है, समझे कि नहीं? हमारी जो जीव भाव है वही त्रिपुरासुरपना की भाव है, और ये जीव भाव का छेदन करेगा कौन? जो इस तीन पुरों का नाश करेगा तभी जाकर हमारा जीव भाव नाश होगा, समझे कि नहीं। तीन पुरों में अहम बुद्धि जब तक रहेगी जीव भाव नष्ट होगा। स्थूल शरीर में जन्म मृत्यु का भाव, सूक्ष्म शरीर में भूख प्यास कर्ता भोक्ता का भाव, सुषुप्ति शरीर में मूर्खता का भाव, अज्ञानता का, मूर्खता, मैं कुछ नहीं जानता। जब पूछो तुम जानते हो, बोले नहीं जानता। हेलो जी, परमात्मा को जानते हो, बोले नहीं जानता। अपने को जानते हो, बोले नहीं जानता। हेलो जी, यही तो मूर्खता का भाव। तो ये त्रिपुरासुर का भाव है। शिव महिमने स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने बड़ा सुंदर ढंग से त्रिपुरासुर के वध के बारे में एक श्लोक ही तैयार किया है। रथ क्षोणी यंता सतधृति रगेन्द्रोर धनुरथो रथांगे चंद्रारक रथ चरण पाणी सरयति दिधक्षोस्ते कोयम त्रिपुर तृणमाडंबर विधिर विधेयी क्रीडंत्यो न खलु परतंत्र। देख लो ये भाव है त्रिपुरासुर को वध करने का, आडंबर भगवान शिव ने रचा। और तीनों रथ में विचरण करता हुआ त्रिपुरासुर को कोई मार ही नहीं सके, इतना शक्तिशाली हो गया कि तीनों लोक में उसका तहलका मच गया। देवता आदि सब गए, प्रार्थना किया भगवान शिव को कि महाराज बचाओ, किससे, त्रिपुरासुर से। इतना शक्तिशाली क्यों हुआ, कहां से हुआ, बोले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तीन रथ दे दिए, और कोई उसके तीन रथ को एक ही साथ जो तोड़ेगा नष्ट करेगा तब उसको मारेगा। अब उसके तीनों रथ को तोड़ना संभव नहीं है, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र भी तीनों रथ को तोड़ने में समर्थ नहीं है, विष्णु का सुदर्शन चक्र भी तीनों रथ को तोड़ना समर्थ नहीं है। तो शिव जी ने कहा कि मेरा त्रिशूल समर्थ होगा, बोले तुम्हारा त्रिशूल भी समर्थ नहीं होगा, क्योंकि त्रिशूल भी सुदर्शन चक्र भी ब्रह्मास्त्र भी प्रसिद्ध अस्त्र है। उसने तो शर्त रखी अप्रसिद्ध अस्त्रों के शस्त्रों के द्वारा मेरा रथ को तोड़ा जाए। जी बोले अच्छा ऐसी बात है, चल वो भी हम तैयार करते हैं। रथ क्षोणी है, ये सारी पृथ्वी को ही रथ बना दिया शिव जी ने, प्रसिद्ध रथ, पृथ्वी तो प्रसिद्ध रथ है नहीं, विष्णु का रथ अलग है, ब्रह्मा का रथ अलग है, है इंद्र का रथ अलग है, सभी का रथ अलग, धरती को किसी ने रथ बनाए नहीं आज तक। भगवान ने कहा कि पृथ्वी को ही रथ बनाता हूं। रथ क्षोणी यंता सत धृति, ब्रह्मा जी को सारथी बना दी, जा चलो ये रथ हाँको। तो पृथ्वी रथ को हाँकने वाला यंता सत धृति, और पृथ्वी यदि रथ है तो इसके पहिया क्या होंगे, बोले चंद्रारकौ, सूर्य और चंद्र को धरती रूपी रथ का पहिया बना दिया। रथ चरण पाणी सरई थी, विष्णु को कहा कि तुम तीर बन जाओ, ले जी, और इंद्र को धनुष्वाण बना दी, इंद्र को बनाया धनुष्वाण, विष्णु को बनाया तीर है, ब्रह्मा को बनाया सारथी, सूर्य चंद्र को रथ का पहिया बना दिए, पूरे धरती को रथ बनाया, और भगवान स्वयं बैठ गए। धनुष्वाण भी तैयार हो गया, रथ भी तैयार हो गया ना। अब त्रिपुरासुर को उन्होंने ललकारा, अब तीनों रथ को एक ही तीर से तोड़ना, एक बार छोड़ना है तीर, दोबारा छोड़ना नहीं है। तो शिव जी इस रहस्य को जानते थे, 24 घंटे में एक मुहूर्त के लिए तीनों रथ लाइन से आते थे, उसको कहते अभिजीत मुहूर्त। बारह बजे दिन में बारह बजे वो अभिजित नाम का मुहूर्त होता है जिसमें ये तीनों रथ एक लाइन से आते हैं। भगवान शिव रथ सब तैयार करके हथियार लेकर प्रतीक्षा करने लगे दिन के बारह बजे अभिजित मुहूर्त कब आएगा। जब अभिजित मुहूर्त आया तो देखा तीनों रथ तीर छोड़ा एक तो एक ही तीर से तीनों रथ टूट गए और त्रिपुरासुर मर गए। अब ये जीवात्मा रूपी त्रिपुरासुर को कैसे मारेंगे भाई? यमराज तो एक रथ को मारता है, दो रथ साबुत बचे रहते हैं, बचते हैं कि नहीं बोलो। एक यमराज एक रथ को तो तोड़ता है, अन्नमय शरीर मांसमय शरीर स्थूल शरीर को तो तोड़ता है, लोहे के रथ को तो तोड़ता है यमराज, लेकिन इसके अंदर जो दो रथ हैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर वो यमराज तोड़ नहीं सकता है, इसीलिए जीव रूपी त्रिपुरासुर बचा ही रहता है, मरता ही नहीं है। फिर दोबारे रथ तैयार कर लेता है वो, फिर तैयार दोबारे रथ तैयार कर लेता है, फिर घूमता है। अब ये तो देखो पहला कारण शरीर को नाश किए बिना